الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. آج ہماری نشست کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت. اسلام نے کسی علم کے حصول کے لیے منع نہیں کیا. بہت سارے علوم ہیں اور اس جدید دور میں بہت سے ایسے جدید علوم موجود ہیں کہ جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ علم جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے وہ علم حاصل کرنا ناجائز ہے اور حرام, اور ایسے علم حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی جو آپ کو دین سے دور کر دے, اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے. اور ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم علم دین حاصل کریں, اپنے دین پر استقامت اختیار کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہر شخص تو علم دین حاصل نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ہر ایک کے معاملات الگ ہیں, مصروفیات الگ ہیں, کاروبار الگ ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی عالم بنے, ہر آدمی دین کا علم حاصل کرے؟ کم سے کم اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز, روزہ اور دیگر احکامات صحیح طور پر ادا کر سکے. اتنا علم کم سے کم ضروری ہے, اور یہ سب پر فرض ہے. علم سکھانا فرض نہیں ہے, سیکھنا فرض ہے. یاد رکھیے, اگر کوئی عالم آپ کو سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, تو وہ ایک مستحب کام ہے جس کو وہ اپنے اوپر لازم کر کے آپ کو سکھا رہا اور آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ علم حاصل کریں, ایسی محافل میں بیٹھیں کہ دین کا علم حاصل ہو, اور اگر انسان چاہے تو کر سکتا ہے. انٹرنیٹ موجود ہے, اس پر کتابیں موجود ہیں, اس کے علاوہ لائبریریوں میں جائیں, دینی محافل میں بیٹھیں, سیکھیں. وضو کے, غسل کے, دیگر مسائل, جو بنیادی مسائل, یہ تمام چیزیں آپ سیکھیں, اور سیکھنا فرض ہے. اگر آپ نہیں سیکھتے اور آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معلوم کریں, اسے یاد کریں, اپنے اہل و عیال کو بتائیں, خود اس پر عمل کریں. اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی. علم دین کی فضیلت تمام علوم پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس علم کا تعلق صرف دنیا ہی سے نہیں ہے, قبر تک, اور قبر ہی سے نہیں بلکہ حشر تک. اسلام نے جو کچھ بتایا, قرآن مجید فرقان حمید نے جو کچھ بتایا, ان تمام علوم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کس طرح زندگی گزارے, اس کی پیدائش سے لے کر موت تک, بلکہ موت کے بعد تک, تدفین تک, اس کے بعد تک تمام حالات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے, تمام مسائل بتا دیے, تمام چیزیں بتا دی. اب اگر ہم اسے حاصل نہ کریں تو پھر کتنی غلط بات. حدیث شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے, من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جب علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے, سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹے. دوسری حدیث شریف کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہوں میں پر بچھاتے کہ ہمارے پروں پہ سے چل کے جائے. वो उसकी अहमियत को जानते हैं कि क्या चीज यह हासिल करने जा रहा। आलिम दीन, इल्म हासिल करने के लिए, तालिब इल्म, इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है, तो उसकी राह में फरिश्ते पर बिछा रहे। और दीगर अहादीस में इस इल्म की फजीलत बयान हुई है, जिससे यह पता चला कि तमाम उलूम से बढ़कर इल्म दीन है। यह हमें नमाज का तरीका बताता है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, मौत का, उसके बाद का, विरासत का, हर चीज का हल जो है वो इल्म दीन में मौजूद है। अब देखें, इस इल्म को हासिल करने के लिए सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कितने सफर किए। यानी आज तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, जगह जगह मदारिस कायम है। आप अपने शहर कराची में देख लें, मेरे ख्याल से हर 10 मील के फासले पर एक मदरसा मौजूद हो, ज्यादा हो तो 20 मील, इससे ज्यादा नहीं। एक एक इलाके में कई कई मदरसे मौजूद हैं, हिफ्ज कुरान नाजरा के तो हर जगह मौजूद है, दरसे निजामिया के मौजूद है। दिन में नहीं पढ़ सकते, रात में जो मदरसे चल रहे हैं वो मौजूद हैं। इल्म हासिल करने वाला हो, कितनी आसानियां मौजूद। लेकिन आज से 1400 साल पहले कितना मुश्किल था, और उस वक्त इन लोगों ने कैसे इल्म हासिल किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला ने, जिनको कहते हैं मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने तैयबा आए तो सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये जहां बैठ जाएगी वहीं मेरा कयाम होगा। सब चाहते थे ना कि हमारे पास कयाम हो, कोई उसकी मुहार पकड़ के इधर खींच रहा है, कोई उधर कुछ है, सरकार यहां तशरीफ ले आए, कहते हमारे घर। फरमाया इसे छोड़ दो, जहां ये बैठ जाएगी वहीं हमारा कयाम होगा। और वो बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला के मकान। तो उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने तैयबा पहुंचे, पहला कयाम उन्हीं के घर। उनकी उम्र 80 साल के करीब, आदमी इस उम्र में बूढ़ा कमजोर हो जाता है, और उस उम्र में सफर करना, और सफर भी आज जैसे नहीं कि गाड़ी में बैठ के आप इधर से उधर चले गए, बल्कि सफर भी ऊंटों पर, घोड़ों पर, कि पूरी बॉडी जो है हरकत में। घोड़े पे अगर आप जाएं, ऊंट पे जाएं, तब भी, और कोई साया नहीं, या तो चादर ओढ़ लें आप, वरना अगर दिन में चल रहे हैं तो ऊपर सूरज चमक रहा है, नीचे आप चल रहे हैं, नीचे तपती हुई रेत गर्मी में। उस उम्र में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला ने मदीने तैयबा से ऊंट पर बैठकर मिस्र तशरीफ ले गए। और क्यों गए कि वहां एक सहाबी हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला ने मौजूद थे, उनके पास हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस थी। इनको पता चला कि सरकार की एक हदीस उनके पास है, सिर्फ हदीस शरीफ को सुनने के लिए ऊंट पर हजारों मील का सफर तय करके वहां पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, बाहर तशरीफ रहे, अरे आप जानते थे जलील कदर साहबी मेजबान रसूल अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला, आइए तशरीफ लाई। कहा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास हुजूर की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां मेरे पास है, मुझे सुनाइए। उन्होंने सुनाई, इन्होंने उस हदीस को याद किया, ऊंट पर बैठे रवाना हो। और कोई काम नहीं, कहा नहीं और कोई काम नहीं, सिर्फ हदीस सुनने के लिए आए। ये शौक था इल्म हासिल करने का, ये शौक था नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस को जमा करने का। इतनी उम्र में ऊंट पर सफर करके, गर्मी में, बुढ़ापे की हालत में, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए वहां पर पहुंचे, और हदीस सुनकर फिर वापस तशरीफ लिया। इससे पता चला कि इल्मे दीन हासिल करने के लिए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कितनी मेहनतें की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला हमा वक्त हुजूर की खिदमत में, सबसे ज्यादा हदीसें उन्हीं से मरवी। क्यों? उनका हाल यही था जिसको दूसरी जबान में कहते दीदे सनम यादे सनम, महबूब के चेहरे को देखना, उनकी बातों को सुनना, बस कोई काम ही नहीं। दो चादरें जिस्म पर होती थी जिससे जिस्म ढांप लिया करते थे, न खाने की होश है, न पीने की, न कारोबार की, कुछ नहीं, सिर्फ हदीसें सुनना है और याद कर। अच्छा, हदीसें सुनते तो भूल जाते, सरकार के बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं हदीसे सुनता हूँ भूल जाता हूँ। फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। इन्होंने चादर फैलाई, सरकार ने ऐसे इशारा किया, कुछ डाल दिया, कहा इसे सीने से लगा लो। इन्होंने सीने से लगा लिया। फरमाया इसके बाद मैं जो भी सुनता हूँ हमेशा याद रख। क्या दिया हुजूर अलैहिस्सलाम? कोई नुस्खा बताते थे, बादाम खा लो, फना चीज खा लो, तुम्हारा जहन तेज हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे इशारा किया, चादर में डाल दिया, सीने से लगा लो। इन्होंने लगा लिया। उन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या लिया, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने, किसी को पता ही नहीं। यही रूहानियत है। एक नजरे करम में अबू हुरैरा का हाफजा इतना तेज कर दिया कि जितनी हदीसें उन्होंने सुनी सब उनको लफ्ज बलफ याद थी। एक मरतबा मरवान ने बुलाया उनके हाफजे का इम्तिहान लेने के लिए, एक पर्दा डाल दिया और पर्दे के पीछे कातिब को बिठा दिया, कहा अबू हुरैरा हदीसें सुनाओ। इन्होंने सुनानी शुरू की, वो लिखता रहा, ये सुनाते रहे, वो लिखता रहा लफ्ज बलफ। उसके बाद एक साल या कुछ और ज्यादा अरसे के बाद दोबारा बुलाया, फिर कातिब को बिठाया, अबू हुरैरा वही हदीसें सुनाओ जो तुमने एक साल पहले या जो भी अरसा हुआ था इतने पहले सुनाएंगे, लेकिन वही लफ्ज बलफ सुनाना। कहा बिल्कुल वैसे ही सुनाऊ। और उससे कहा तुम मिलाते रहना। दोबारा इन्होंने सुनाई, हैरत की इंतहा न रही कि इतने अरसे के बाद एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं था, जो पहले था वही बाद में। तो ये हाफजा अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के सदके में उन्हें अता फरमाया, इसीलिए कि अहादीस महफूज रहे। इसीलिए हम बांगे तो होल कह सकते हैं कि आज ईसाई यहूदी अपने नबी हजरत ईसा हजरत मूसा की जो अहादीस हैं उनके अकवाल हैं, चंद के सिवा कुछ नहीं बयान कर सकते, हम हजारों हदीसें सरकार की बयान कर सकते। ये सब सहाबा का हम पर एहसान है कि उन्होंने दूर दराज मुल्कों के सफर किए, उन अहादीस को हासिल किया और लफ्ज बलफ्ज आगे पहुंचाया। और आगे पहुंचाना तो दूर की बात है, इस तरह पहुंचाया कि जैसा सुना वैसे पहुंचाया। एक सहाबी हदीस शरीफ बयान करते हुए मुस्कुरा रहे, किसी ने पूछा कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात, भाई कोई बात मुस्कुराने की हो तो बात में मुस्कुराए। कहा मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना जानता हूं जब यह हदीस सरकार से सुनी थी हुजूर भी मुस्कुरा रहे, उसी कैफियत में आगे पहुंचा दिया। ये सहाबा की शान, ये उनकी मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है, जरूरी है, कम से कम इतना इल्म कि वो अपने दीनी अहकाम पर सही तौर पर अमल कर सके। अब तालिबे इल्म की फजीलत देखिए। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बड़ी शान वाला बादशाह था। उसको तीन बातों में इश्तबा था, यानी शक था। एक तो यह शक था कि वो सबुक्तगीन का बेटा है या नहीं। महमूद गजनवी के वालिद का नाम था सबुक्तगीन, वो भी बादशाह था। उसके बाद ये बना, किसी ने कह दिया होगा कि भाई तुम बेटे नहीं हो, तुम्हें लेके पाला या जो भी सूरत हुई होगी, शक था। दूसरा ये शक था कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। सरकार ने फरमाया ना उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया की मीरास दिरहम और दीनार नहीं, मालो दौलत नहीं, इल्म है। तो उनकी मीरास इल्म है और उलमा इल्म हासिल करते हैं। सरकार ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस। इस हदीस पर उसको शक था, पता नहीं यह हदीस सही है या नहीं। और तीसरी बात कि रोजे हशर यानी कयामत का दिन कायम होगा या नहीं होगा। कितनी चीजें हुई, तीन, तीन बातों में महमूद गजनवी को शक था। अब देखिए, यह भी मुत्तकी परहेजगार आदमी था, इबादत भी करता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, नमाजें भी पढ़ता था, बहुत नेक मुत्तकी आदमी। तीन बातों में उसको शक था, लेकिन उसने किसी से डिस्कस नहीं की, पूछा नहीं, शक मौजूद था। एक दिन रात के वक्त अपनी सवारी पर शहर से गुजर रहा, और जब बादशाह की सवारी गुजरे तो आप देखें कितना प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे दाएं बाएं सिक्योरिटी पुलिस और दीगर खुद्दाम जो थे सब। उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, शमा का दौर था, मशल जिसे कहते हैं ना, और बादशाह के लिए बहुत अच्छी सी मशाल होती थी, घोड़ा गाड़ी पे सफर होता, ये बैठा हुआ अपनी सवारी पर, दोनों तरफ मशालें रखी हुई खूबसूरत जिसकी रोशनी दूर तक जा रही, बड़ी शान से बैठा है, सवारी चली जा रही। अचानक इसकी निगाह एक लड़के पर पड़ी, नौजवान लड़का तालिबे इल्म, दीन का इल्म हासिल कर रहा, उसके हाथ में एक किताब। जो मशाल बादशाह की सवारी पर लगी हुई थी जिसकी रोशनी थी, उसकी रोशनी में वो किताब पढ़ रहा था वो लड़का। अच्छा, सवारी आगे बढ़ रही है तो वो भी आगे बढ़ रहा, लेकिन उसकी नजरें किताब पर हैं। पढ़ा, फिर दूसरा वर्का पलटा, फिर तीसरा पलटा, उसी की रोशनी। इसके दिल पर बड़ा असर हुआ कि देखो इसको मुताले का कितना शौक है, ये नौजवान है, तालिब इल्म है, हो सकता है कि इसके घर में चिराग ना हो या चिराग में तेल डालने के लिए इसके पास पैसे ना हो, तो इसने देखा कि बादशाह की सवारी गुजर रही है, उसमें मशालें हैं, तो उस रोशनी में ये किताब पढ़ रहा है। बादशाह के दिल पे बड़ा असर हुआ महमूद गजनबी के। इसने क्या किया, उसको बुलाया और मशाल उठा के उसको दे दी, ले जाओ तुम जाके पढ़ लो। वो बड़ा खुश हुआ, और हो सकता है यही मसला हो कि उसके पास पैसे ना हो तेल लाने के लिए जो चिराग जलाए, गरीब आदमी होगा, चला गया। सवारी गुजर गई, महमूद गजनबी महल में पहुंच गया, सोने के लिए लेटा, सो गया, ये तो सो गया लेकिन इसकी किस्मत जाग गई। इस तरह जाग गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया और एक जुमले में इसके तीनों सवालों का जवाब दे दी। सरकार ने फरमाया ना, अना अफसाहुल अरब, मैं अरब में सबसे ज्यादा फसी हूं, और फसी कलाम वो होता है कि बात मुख्तसर हो लेकिन कूजे में दरिया को बंद कर दिया गया, बात मुख्तसर हो उसी में सब कुछ हो, ये नहीं कि लंबी चौड़ी बात हो, फसी कलाम वही होता है। और हुजूर ने फरमाया अना अफसाहुल अरब, मैं तमाम अरब में सबसे ज्यादा फसी हूं। सरकार ने क्या फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, पहले सवाल का जवाब, तूने जिस तरह मेरे इल्म के वारिस की कदर की, दूसरे सवाल का जवाब, कयामत के दिन अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा अता करेगा, तीसरे सवाल का जवाब। एक जुमले में तीनों सवाल का जवाब दे, सबुक्तगीन के बेटे, बता दिया कि तेरा बाप सबुक्तगीन है, मेरे इल्म के वारिस यानी जो इल्म हासिल कर रहा है, अंबिया की जो विरासत है इल्म है ना, उसकी तूने कदर की, दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। और इसको पता, सोच रहा था पता नहीं कयामत का दिन कायम होगा नहीं होगा, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा अता फरमाए, तीसरे सवाल की जवाब। तो ये है इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन और मुत्तकी परहेजगार लोगों की कैफियत, कि जब ये इस तरह करते हैं अल्लाह तबारक व ताला इन्हें जजा अता फरमाता है, बेहतरीन जजा अता फरमाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दे दिया। तो पता ये चला कि जब तालिबे इल्म की ये शान है तो जो आलिम है उसकी क्या शान है। फरमाया एक हदीस शरीफ में जिसका मफहूम ये है कि जिसने किसी मुत्तकी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसा है कि जैसे उसने किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। फरमाया उलमा के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, चींटियां दुआ करती हैं, इन्हीं के वसीले से बारिश भी बरसती है और इन्हीं के वसीले से जंगों में फतह भी होती। बेहिम तुम तरूना बेहिम तुम तहूना औ कमा कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनसे यह हमें पता चला कि हमें चाहिए कि इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं और खुद भी सीखें, कि ये सिखाना फर्ज नहीं सीखना फर्ज है। और आजकल बहुत आसानी है, इंटरनेट के जरिए भी, दीगर मकामात पर भी, जगह जगह दारुलूम मदारिस सारी चीजें कायम है, मौजूद है, सीखने वाला होना चाहिए। और आपको कोई एक बात मिल जाए, आपने एक मसला सीख लिया, आप वही मसला अपने अहले अयाल को बताइए, उनको सिखाइए, नमाज का तरीका बताइए, गुस्ल का तरीका बताइए, तमाम बुनियादी मसाइल खुद सीखें और आगे भी पहुंचाएं। तो ये जरूरी चीज है। दीगर उलूम जो है वो अपनी जगह है, किसी इल्म के हुसूल से इस्लाम ने मना नहीं किया। हाँ, वो इल्म जो आपको दीन से दूर कर दे, उस इल्म से आप पहले ही दूर हो जाइए। अव्वल चीज जो है वो सिर्फ इल्म दीन है, इसके हुसूल में रहिए, और जो ये हासिल करता है دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو بڑی جزا ملتی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بھائی ہے, یہ نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, میں صبح سے شام تک کماتا ہوں, روزی لے کر آتا ہوں, اس سے کھانا پکتا ہے, روٹی پکتی ہے. یعنی اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بھائی کو وہ بالکل اگنور کر رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتا, اور بھائی کیا کرتا تھا, وہ صرف علم دین حاصل کر رہا تھا, صرف علم دین میں لگا ہوا تھا, اور یہ جو بڑا بھائی تھا یہ کمانے میں لگا ہوا تھا. تو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہ کچھ کرتا ہے نہ کام کا نہ کاج کا, ڈھائی من اناج کا یہ کچھ کرتا ہی نہیں, کھاتا رہتا اور بس پڑھنے میں لگا ہوا ہے, میں محنت کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا سن, ہو سکتا ہے کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہا ہو, تجھے جو رزق مل رہا ہے اسی کی وجہ سے. یعنی یہ بتانا تھا کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اس کو یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں کر رہا, اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں, اسی کے صدقے میں اس گھر میں رزق بھی نازل ہو رہا اتر رہا. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیے, خود بھی حاصل کیجئے, اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دین کی سمجھ, کیونکہ اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا ہو. اے الہ العالمین, یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.